ओम शांति। जीवन में कभी कभार ऐसी भी कोई घटनाएं घटती हैं जो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, जो कभी मन में भी नहीं होता, चित्त में भी नहीं होता, और वो छोटी छोटी बातें जीवन भर चलती रहती हैं। फिर सोचते हैं कि वो बहुत जल्दी सिमट जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, उनसे बहुत जल्दी हम किनारा कर लेंगे, लेकिन वो बातें जीवन भर पकड़ लेती हैं। ऐसे ही 1936 सिंध हैदराबाद यज्ञ की स्थापना, परमात्मा का अवतरण, साक्षात्कार का पार्ट जो चालू हुआ, तो उस समय जो भी यज्ञ में बहुत सारे भाई बहने आए, साक्षात्कार किया, तो शायद किसी के मन में नहीं होगा कि इतना लंबा यज्ञ चलेगा। ये जो 80-81 साल हो गए, उसमें तो शायद यही सोचा होगा कि जल्दी जल्दी अभी विनाश होने वाला है, क्योंकि बाबा ने भी कहा था कि अगली दिवाली नहीं आएगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये संकल्प जरूर आए होंगे कि जल्दी ये संसार अभी परिवर्तन होने वाला है। लेकिन आज 81 ईयर हो गए थे वो थोड़े समय के लिए, लेकिन पूरी लाइफ लगी। इसी तरह से एक कहानी है, एक मोहल्ले में एक काजी रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, तो वो अच्छा काम काज करते थे, सब वेल सेटल्ड थे। लेकिन उसमें एक लड़का था जो नए ख्यालातों का था। हालांकि सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, समाज में प्रतिष्ठित थे वो, उनका सम्मान था, पूरा समाज उनका अदब करता था। तो जो वो लड़का है वो भी सबका सहयोग करता था, सबको सम्मान देता था, लेकिन घर में सबसे अलग था, वो नए विचारों वाला था, सबके विचारों को सम्मान भी देता था, लेकिन वो नमाज पढ़ने नहीं जाता था, रोजे नहीं रखता था। सब शाम के टाइम में जो मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हो जाते थे, बैठते थे आके एक चौपाल के ऊपर, माना जो शायदार वृक्ष होता है उसके नीचे थड़े पर आकर बैठते थे, इधर उधर की बातें करते थे, धार्मिक बातें भी करते थे, लेकिन वो सबको सम्मान देता था। हालांकि सबको पता था कि ये नमाज पढ़ने नहीं जाता है। तो एक दिन महफिल चल रही थी, उसके सब दोस्त थे, तो सब ने कहा कि आज तो नमाज पढ़ने चलो, रोजे के दिन चल रहे थे। तो सब लड़कों को पता था कि तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी जोर जबरदस्ती करने पर वो चला गया साथ में। चलो ठीक है, एक बार जाने से क्या होता है, तो वो चला गया उनके साथ। फिर वापस आया तो जो लड़के थे, लड़कों ने सब घर में बता दिया उसके कि आपका बेटा आज नमाज पढ़ने गया था। तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ये भी नमाज पढ़ने जा सकता है। फिर भी जब वो लड़का घर में आया तो सबने उसको बधाई दी, सब खुश हुए कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है कि नमाज पढ़ी है। तो उसकी दादी कहती है कि अभी कल से तो तुमको रोजाना जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नमाज पढ़ ली तो आपको भी फिर धर्म की मर्यादा का सवाल है, अब तो रोज जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं तो ऐसे लड़कों के कहने पर चला गया था। तो दादी कहती है उसकी कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार नमाज पढ़ने गए तो आपको भी डेली पढ़नी पड़ेगी, वो रोज भोजन भी आपको शाम को ही मिलेगा, पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। तो वो लड़का बड़ा पसोपेश में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तो उसके दादा कहते हैं, क्या सोच रहे हो, गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ गई नमाज। ये कहावत वहां से प्रचलित हुई है, गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ गई नमाज। ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में भी जब हम ज्ञान से जुड़े तो किसी ने ये नहीं सोचा कि इतने लंबे ब्राह्मण जीवन में चलेंगे, हमारी लाइफ इतनी लंबी होगी, ब्राह्मण लाइफ, ईश्वरीय कर्तव्य यहां तक चलेंगे, इतनी सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, खान पान का परहेज रखना पड़ेगा, इतने बड़े कर्तव्य विश्व परिवर्तन के, कभी संकल्प में भी नहीं था कि विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के निमित्त हमको भगवान बनाएगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारियां बाबा ने हमारे गले में डाल दी। गए थे हम 7 दिन का कोर्स करने या 5 दिन की प्रदर्शनी करने और पूरी जिंदगी दे बैठे, या कहते कोई गया था विटनेस देने, जमानत देने, लेकिन खुद ही गिरफ्तार हो बैठे, या फिर डॉक्टर को कोई खांसी की जांच कराने जाता है कोई छोटा मोटा मरीज, तो जाके डॉक्टर फिर जब जांच करता है तो देखता बहुत सारी बीमारियां इसको क्रॉनिक है, उसको बोलता सिटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, एक्सरे कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, तो सारी जांच करते करते देखता, फिर तो बाद में डॉक्टर कहता भी ये तो बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां भी, ऑपरेशन कराओ। तो वो बेचारा खांसी की दवाई लेने गया था लेकिन वहां एडमिट हो बैठा है वो। तो उसी तरह उसी के ऊपर एक कहावत भी प्रचलित है कि गए थे नमाज छुड़ाने और गले पड़ गई, गए थे रोजे छुड़ाने और गले पड़ गई नमाज। तो बाबा ने जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला तो हमें कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हमारे गले में डाल दी विश्व परिवर्तन करने के लिए, कि तुम विश्व कल्याण के निमित्त हो, तुम विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। माना हमारी चेतना के अंदर कितने बड़े संस्कार हैं वो पूरे संसार को परिवर्तन करने के लिए, तो उनकी पहचान बाबा ने हम सबको दी। धीरे धीरे हम सभी अपने कर्तव्यों से सचेत हुए कि सचमुच हमारा इस संसार में अवतरण हमारा किस लिए हुआ है, अंत समय में हमारा ये जो जन्म है कितना ऊंच है, इस जन्म के प्रति बाबा ने हमें कितना जागरूक कर दिया, इन दायित्वों को निभाने के लिए, इन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए बाबा ने हमारे में क्या क्या योग्यताएं भर दी। ऐसे ऐसे जो संकल्प हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं होते थे, ऐसे संकल्पों का निर्माण कर दिया, ऐसे एक संकल्पों की नई दुनिया हमारे सामने रख दी कि पूरे संसार को संकल्पों से परिवर्तन करना है। हमारे जीवन को कितना गुणवान बना दिया, कितने प्रकार से अलौकिक श्रृंगारों से श्रृंगारित कर दिया, हमारी दृष्टि बदल दी, हमारे बोल बदल दिए, हमारे संकल्प बदल दिए। तो अब ये जो गले में माला पड़ी गई है विश्व परिवर्तन करने की, ये जो दायित्व हम सबको मिला है, तो इसको हम अगर निष्ठापूर्वक पूरे कर्तव्य प्राणता पूर्वक इसको निभाएंगे तो ही हम इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। अगर हम मर्यादाओं से परिचित अच्छी तरह से नहीं है, या ज्ञान से परिचित नहीं है, ज्ञान से थोड़ा दूरी है, ज्ञान से थोड़ी एलर्जी है, तो इस ब्राह्मण जीवन का सुख जो है वो बहुत दूर अनुभव होगा। तो बाबा ने हमारे जीवन में कितने गुणों से हमारा जीवन भर दिया, तो इस संसार के जो परिवर्तन करने का कर्तव्य है इसको हमें निष्ठापूर्वक अगर निभाना है तो श्रीमत पर कदम कदम पर हमको एक्यूरेट चलने का पूरा बल्कि 100% प्रयास करना है कि कहीं भी हमारे से कोई ऊपर नीचे गलती ना हो जाए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब माँ गर्भ धारण करती है, माँ गर्भवती होती है, तो कितना बच्चे का ख्याल रखती है वो, जो वो सोचेगी, जो वो खाएगी, जो उसके संस्कार होंगे वो ही बच्चे के होंगे। तो बाबा ने हमें ही वो उदाहरण देकर समझाया था कि जो पूरा संसार है, भगत आत्मा है, प्रजा है, ये भी तुम्हारे संकल्पों के गर्भ में है। माना कितना ऊंचा ये और सूक्ष्म ज्ञान है कि हमारे जो संकल्प हैं उन संकल्पों के आधार पर ही सृष्टि की आत्माओं को एनर्जी मिल रही है। अगर हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी सारे संसार को प्रभावित कर रही है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव संकल्प हैं, पॉजिटिव थॉट हैं, तो उन संकल्पों से ही संसार को वो एनर्जी मिल रही है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे उदास तो सारा संसार उदास, तुम बच्चे खुश तो सारा संसार खुश। तो जो हमारा संकल्पों का संसार है, हमारे जो विचारों का संस्कार है, संसार है, वो किस तरह से है? कौन कौन से ऐसे ख्यालात हैं जिसके कारण हमारा आगे पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है, या दूसरों के पुरुषार्थ में भी हमारे संकल्प बाधक बने हुए हैं? कर्म तो बाद की बात है, लेकिन किसी को देख के अगर हमारे संकल्प ऊपर नीचे हो रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, तो वो ना केवल हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, बल्कि सामने वालों के भी पुरुषार्थ में बाधक हैं, बल्कि वायुमंडल को शक्तिशाली ना बनाने, शक्तिशाली बनाने में भी बाधक हैं। तो संकल्पों का जो संसार है, पहले तो हमको उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हमारी बुद्धि में कहां तक है, क्योंकि जब तक संकल्प रूपी बीज हमने उसको अच्छी तरह से फलीभूत नहीं किया या उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया, तो हमारे संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे। क्योंकि सारे हमारे ब्राह्मण लाइफ के परिवर्तन का आधार क्या है? संकल्प। हम जब सभी नए नए ज्ञान में आए, तो ये सारा जो ज्ञान है टोटल नए संकल्प है सारे ये। लेकिन चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिछले जन्म के, माना इस ब्राह्मण जन्म से पहले के जो संकल्प हैं, वो ही हमको पकड़ के रखे हुए हैं? उन संकल्पों से, उन विचारों से आ सकती है, कहीं ना कहीं तृष्णाएं हैं, वो वाली तृष्णाएं, जो तृष्णाएं इस पुरुषार्थ में बाधक हैं, अनावश्यक इच्छाएं जो इस ज्ञान के खिलाफ हैं, जो संसार को परिवर्तन करने में कहीं ना कहीं वो आड़े आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो अवरोध डाल रही हैं। तो पहले तो हमको अपने संकल्पों को चेंज करना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे संकल्प होंगे उसी के आधार पर फिर हमारे बोल होंगे, उसी के आधार पर फिर हमारे कर्म होंगे, और वो ही हमारी व्यवहारिकता सिद्ध करेगा। व्यवहार चेंज तुरंत नहीं होता है, लंबे समय की स्थूल साधना भी, एक तो सूक्ष्म है ठीक है, लेकिन स्थूल साधना भी हमें सूक्ष्म में या स्थूल में स्वयं की जांच, स्थूल में हम इन्हीं कर्मेंद्रियों से ही पतित बने हैं, चाहे आंखों से हैं, या दृष्टि से, या बोल से हैं, या सुनने से हैं। अब इन्हीं कर्मेंद्रियों से हमें स्वयं को पावन बनाना है, स्वयं की आत्मा को पावन बनाना है। तो सबसे पहले हमको अपने संकल्प के, कौन कौन से संकल्प हमको बाबा ने दिए हैं जो हमको निरंतर स्मृति में रहने चाहिए। हमेशा बाबा इतने सारे सम्मान देते हैं, उन सम्मान के ऊपर चिंतन, उनके ऊपर फोकस, और उसको स्वीकार करना सबसे मुख्य बात है। पूर्ण जो मैं मुख्य रूप से उसके ऊपर, उसको स्वीकार करना। सम्मान याद तो रहते हैं, लेकिन स्वीकार करना सहज काम नहीं होता है। इतने इतने बड़े सोमान है, उसको स्वीकार करना कि रियल मैं हूं ये, उस स्वीकार तभी होंगे क्योंकि वो पवित्र संकल्प है, वो बहुत ऊंच संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है। तो हमारा मानसिक धरातल, हमारी बुद्धि भी, हमारा मन भी वैसा चाहिए, क्योंकि वो संकल्प रूपी बोझ इतना पावरफुल है कि धरनी अगर हमारी ठीक नहीं है तो फलीभूत नहीं होगा, वो वहीं का वहीं ऐसा क्या वैसा रहेगा। और उस संकल्प रूपी बीज को अनेक प्रकार जो रंग बिरंगी मायावी दुनिया है, मायावी चिड़िया है, वो खा जाती है, विस्मृति आ जाएगी या कोई संघ का प्रभाव आ जाएगा। तो पहले तो बाबा ने कहा कि संकल्प रूपी बीज जो बहुत शक्तिशाली है, जो हमें बाबा से मिल रहे हैं, उस शक्तिशाली बीज को फलीभूत करने के लिए अपने मन बुद्धि को भी उतना ही स्वच्छ करना अनिवार्य है। अगर मन बुद्धि रूपी धरनी हमारी ठीक नहीं है तो संकल्प भी समय पर वो कार्य नहीं करेगा, केवल सूचना मात्र ही रह जाएगा ज्ञान कि हमें ये याद है, लेकिन हमारे आचरण में या हमारे कर्मेंद्रियों में, हमारे रगों में, हमारी नसों में वो समा जाए, इसके लिए उसको पहले स्वीकार करना, मन बुद्धि को स्वच्छ रखना। कहीं ना कहीं जो हमारे सूक्ष्म या स्थूल रूप से जो रिश्ते जुड़े हुए हैं मन बुद्धि रूपी तार से, उनको कहीं ना कहीं से हमको हटाने का प्रयास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संतों का रस एक बाप से अनुभव करना है। तो संकल्प का संसार हमारा सारे दिन में सवेरे से लेकर रात्रि तक कैसे कैसे संकल्प चल रहे हैं उसके ऊपर पूरा अटेंशन। फिर हमारे बोल कैसे हैं, क्योंकि यही बोल है जो किसी के जीवन को सुख में बना सकते हैं और यही बोल है किसी को नीचा गिरा सकते हैं। तो हमें बाबा ने बोलने का भी तरीका सिखाया, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, किसी को सुखदायी बोल बोलो जिससे दूसरे का जीवन परिवर्तन हो जाए, दूसरे के दुख दूर हो जाए, बाबा का परिचय दो। तो बोल भी हमारे कैसे श्रेष्ठ होने चाहिए, उसके बाद फिर कर्म हमारे नेचुरली वैसे होंगे। अगर हमारे इन दो चीजों के ऊपर अटेंशन है विशेष तो कर्म नेचुरली वैसे होने लगेगी, उसके ऊपर फिर विशेष अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी सोच है जैसे बोले वैसे कर्म में प्रत्यक्ष रूप में वो दिखाई देंगे। इसलिए स्वयं के संकल्पों पर, बोल पर, कर्म पर, क्योंकि सारे दिन में हम ये तीन मुख्य रूप से हमारे जीवन में आते हैं। फिर बाबा ने हमें अनेक प्रकार के गुणों की, शक्तियों की मालाएं पहनाई हैं, उन गुणों पर चिंतन करना है। जैसे अंतर्मुखता क्या है, तो अंतर्मुखता की गुफा में, कहने में तो बहुत आसान काम है लेकिन इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अंतर्मुखता का अर्थात हम बाह्य जगत से जो हमारे लिंक थे अभी संसार में, उनसे बिल्कुल किनारा करना, न्यारे हो जाना उनसे। संसारिक दायित्व तो निभाने हैं, ऐसा नहीं उनको भी छोड़ देना है। सामाजिक दायित्व, संसारिक, पारिवारिक, जो भी आर्थिक दायित्व है वो तो हमको पूरे करने ही है, लेकिन वो करते हुए भी हम निमित्त जो भाव है हमारा वो ना भूल जाए, वो हमारे केवल निमित्त मात्र है। उन दायित्वों को निभाते समय अगर हम बाबा को अपने साथ में अटैच कर लेते हैं तो फिर हमें वो प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना मेरा मेरा, परसों की भी मुरली है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा पिता, मेरा चाचा, काका, ताया है, तो सही है, सब मेरे ही है, लेकिन को केवल वो निमित्त मात्र हैं। तो उन दायित्वों को निभाते समय हमें एक अंतर्मुखता की गुफा, ये ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक संसार है, जो बाबा का आंतरिक संसार है, जो बाबा का आंतरिक ज्ञान है, जो हम सब आत्मा को पावन बनाने के लिए है, तो हम उस ज्ञान से जुड़े रहें, कुछ न कुछ चिंतन चलता रहे अंदर ही अंदर। अगर हम अंतर्मुखता के ऊपर अभ्यास करते हैं, मना अलग रिश्ते ना हमारे बने ब्राह्मण जीवन में भी, नहीं तो कई प्रकार के नए संबंध बन जाते हैं, कई प्रकार के अवरोध पैदा हो जाते हैं, क्षेत्रीय, हमारा प्रांत तुम्हारा प्रांत, हमारा गांव तुम्हारा गांव, मेरी भाषा तेरी भाषा, ये सब हमारे ब्राह्मण जीवन में अवरोध है। इसलिए बाबा कहते हैं ना सिंधी में बोले तो पापड़ बंद, वास्तव में बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं पिछले जन्म की हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, पंजाबी में भी बोलना चाहिए। तो और हमको जब जैसे ज्ञान में हम अपने जीवन के बताते हैं तो पंजाबी हो या कोई भी हो, तब से हमारी हिंदी शुरुआत होगी। अभी जो लौकिक गांव की भाषा वो भी इतना मुखबर नहीं है, बोलना मुश्किल हो जाती है, समझ में आती है पूरी लेकिन बोलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए हिंदी अगर कोई दो अपनी भाषा में बात भी करते हैं तो एक हमारा टोकने का संस्कार, हालांकि टोकना नहीं चाहिए लेकिन टोकने का संस्कार पड़ गया है, ये हमारे गांव में ऐसा होता था, हमारी मम्मी ऐसी करती थी, ये हमारा आया कहां से, बाबा ने कहा, ये तो टोटल चेंज हो गया ना। तो बहुत अटेंशन रखने की बात है, लेकिन लंबे समय तक बोलता नहीं है, उसके ऊपर सूक्ष्म स्थूल, पहले तो स्थूल ध्यान रखने की जरूरत है। मुख से क्यों बोल निकल रहे हैं अभी तक भी वही पुरानी स्मृतियां क्यों पकड़ के रखी है हमने मन बुद्धि में। हाँ, दायित्व तो निभा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे संस्कारों के अनुसार उनको डालना है अभी, ना कि हमें उनके संस्कारों के अनुसार डल जाना है। वो अपनी भाषा में बुला रहे हैं और हम भी उनकी भाषा में डल गए, हम भी उनके संस्कारों के या उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल उन्हीं के अधीन हो गए, तो हमारा परिवर्तन क्या हुआ। तो कम से कम उनको तो इतना तो एहसास हो कि इस ब्राह्मण जीवन में जुड़ने के बाद इनकी लाइफ में परिवर्तन आया, नहीं तो वही भाषा, वही वाणी, वही बोलचाल, वही व्यवहारिकता, वही आचार विचार, वही व्यवहार। तो पहले तो स्थूल परिवर्तन कम से कम दिखाई देना चाहिए, नहीं तो आपस में दो प्रांत के मिलेंगे वही बातें शुरू हो जाती हैं। और जब समझ में नहीं आता तो तीसरा ये भी सोचता है, हो सकता है गाली निकाल रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। और तमिल में दो भाई बोलेंगे आपस में तो हमको क्या पता क्या बोल रहे हैं वो, या किसी भी भाषा में बोलेंगे। इसलिए जीवन में स्पष्ट बाध्यता बहुत जरूरी है। तो हमारा भाषा पर भी नियंत्रण, अर्थात बोल जो बाबा के बोल है, जो बाबा की भाषा उसी के अनुकूल अगर हम अपने जीवन में चले, तो ये अंतर्मुखता के अंतर्गत है कि इस ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक संसार है, जो बाबा के द्वारा रचा हुआ संसार है, इसके अंदर है ना अंतर्मुखता, तो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। नहीं तो बाह्य जगत की तो अनेक जन्म के हमने, अनेक जन्म उसमें रहे, बाह्य जगत की चीजों को पकड़ के रखा, व्यक्तियों को पकड़ के रखा, संबंधों को पकड़ के रखा, और फिर यहां पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमने संस्कारों को परिवर्तन करने का वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उनको पुरानेपन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, केवल निमित्त मात्र उनको निभाना है। किसी माता को वो भाषा नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन जो आती भी है और आने के बावजूद ही हम उसको छोड़ नहीं रहे तो उसको क्या कहेंगे फिर। तो इसके ऊपर भी हमारा अटेंशन होना जरूरी है। फिर दूसरा, अगर हम इसको इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ना, पुरुषार्थ मार्ग का अगर रस अनुभव करना है, सुख अनुभव करना है, तो गुणग्राही दृष्टि होना बहुत अनिवार्य है। हर एक के गुण देखने हैं। बाबा तो कहते हैं मेरा हर बच्चा विशेष है, कभी भी बाबा ने किसी बच्चे को इग्नोर नहीं किया, भले कितने बाबा ने कहा रावण से भी अगर 100 गुना तेज है, लेकिन फिर भी एक गुण तो उसमें है, बाबा को तो पहचाना कम से कम। और देखा जाता अगर हमारे में गुण ग्राह की दृष्टि है तो सचमुच गुण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हमने अपनी दृष्टि नहीं बदली है, अभी भी अवगुणी दृष्टि है, तो दूसरों में भी वैसा देखेंगे, वैसा चश्मा पहनेंगे तो वैसा दिखाई देगा। तो गुण ग्राह की बहुत जरूरी है। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, सब बाबा के बच्चे हैं और अपने परिवार है, ये हमारे हाथ की जैसे उंगलियां, इसको कैसे काट के फेंकेंगे, अगर उंगली पर अगर घाव होता है तो हम उसको मलम पट्टी करेंगे ना, उसको छोड़ेंगे थोड़ा, तो हमारा पूरा अपना परिवार है, कभी आपस में मन मुटाव होता, टकराव भी होता तो छोड़ देना, बाबा ने उसके लिए मेथड बताया बीती सुबीती, उसको कुछ कर नहीं सकता, जो हो गया हो गया, लेकिन हम एक दो को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते चले, ताकि जो बाबा ने समाज या विश्व को परिवर्तन करने की जो माला हमारे गले में पहनाई है, इसको हम पूरी तरह बना के रखें। पढ़ते रहना, नमाज पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो ये 500 टाइम नमाज पढ़नी है, नमाज मुख्य रूप से 5 बार पढ़ी जाती है ना, एक तो होती है सवेरे सूर्योदय से पहले, फिर दूसरा सूर्योदय के बाद, फिर शाम को सूर्य अस्त के पहले, फिर सूर्यास्त के बाद, फिर रात को सोते समय, मना रात्रि जितने बजे भी कर लो, 5 बार नमाज होती है। जैसे यहां 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये नमाज पढ़ते रहना है। तो ये था कि गुण ग्राहक, और दूसरा पुरुषार्थ के प्रति गंभीरता भी चाहिए, हम ढीला नहीं छोड़ दे। कई बार पुरुषार्थ करते करते अनेक प्रकार के कोई रुकावटें आती हैं, शारीरिक कष्ट है या संबंधों में है, कहीं कोई लौकिक वो बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन अपने पुरुषार्थ के प्रति गंभीरता नहीं छोड़नी है, उनके प्रति गंभीर रहना, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति गंभीरता नहीं छोड़नी है। क्योंकि पुरुषार्थ को अगर हम हल्के में ले लेंगे, छोटी मोटी बीमारियों के अधीन हो जाते हैं, या कोई फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, उसको छोड़ के, जबकि वो फंक्शन में हमारा जाना जरूरी नहीं है और हम जा रहे हैं उसमें, तो हमारी साधना तो खत्म होगी ना। तो पुरुषार्थ की जो गंभीरता धीरे धीरे कम होती जाती है, हो जाएगी, क्योंकि संघ का रंग है, अगर दूसरों ने अपने को परिवर्तन नहीं किया और हम उसी संघ में बह गए तो फिर बार बार उन्हीं कार्यक्रम में जाते रहेंगे, जहां हमारे जाने से चलता है वो, ऐसा नहीं हम नहीं गए तो नहीं चलेगा, चलेगा वो, लेकिन हम अपनी साधना को नहीं छोड़े, चाहे हमारा उसमें योग लगे नहीं लगे, सफलता मिले ना मिले, लेकिन हम अपने दिनचर्या को नहीं छोड़ने का, क्योंकि एक संस्कार, पहले हमको संस्कार डालने पड़ेंगे, परिवर्तन की जो प्रक्रिया वो तो बाद में शुरू होगी, लेकिन पहले हमको स्थूल रूप से दिनचर्या में अपने को सेट करने के संस्कार डालने पड़ेंगे, तभी वो एक समय ऐसा आएगा कि वो संस्कार हमारे नेचुरल काम करेंगे, फिर हम फंक्शन में जाएं तो उस समय भी हमारे संस्कार वहां स्वतः काम करेंगे। अगर पहले से हमने डाले नहीं और पहले से फंक्शन में जाना शुरू कर दिया तो फिर हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, फिर वही हमारे संस्कार, वही खाना पीना देखना सुनना, वही फंक्शन में हिस्सा लेना, फिर परिवर्तन नहीं होगा। वो तो देखे ना, इसलिए बाबा ने तुम सबको पहले क्या बताते हैं, पहले ज्ञानी इस तरह के देते हैं कि बाद में दिली नहीं होगी जाने की। लेकिन आपको कोई जब बड़ा बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा ना। समय तो ऐसा भी है कि समय जो फंक्शन होते हैं, कभी आपको बोला जाए कि आपको बाबा का परिचय देने, तो आप नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा ना, उसमें तो दिल करेगा करेगा। लेकिन हमारी वो जो टाइम है या कोई विशेष सेवा आ जाती है, कोई आपको पास कोई मरीज आ जाता है, तो आप तो सेवा करने जाएंगे ना। लेकिन उसमें हमारा जो बुद्धि होगा वो स्वतः काम करता रहेगा, जो पहले से हमने संस्कार डाले हुए हैं, जिस सीट पर मन बुद्धि को बिठा के रखा हुआ है, तो वो स्वतः काम करेगा। काम करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर हमारा विशेष अटेंशन चाहिए। गुण ग्राहक की दृष्टि लंबे समय से, तो अंतर्मुखता हो गया, फिर गुण ग्राहक दृष्टि हो गया, और एक सरलता। जीवन में सरलता बहुत जरूरी है, अपने संस्कारों को जो है सबके साथ मिला के चलना है, कोई कैसा भी है, लेकिन उस समय उसी माहौल के अनुकूल अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, मोल्ड कर लेना, किसी की बात को महत्व देना। ऐसा नहीं कि मैं अपने संस्कारों की जिद पर अड़ा रहा हूं, और ये मोल्ड होंगे साधना के साथ, ज्ञान की साधना। भले जरूर अगर हमारी स्थूल रूप से अगर बैठ के साधना नहीं भी होती है, तो ज्ञान पढ़ना भी एक बहुत बड़ी साधना है। कई बार देखते हैं मुर्दे की किताब बाजू में पड़ी होती है, लेकिन पकड़ने को दिल ही नहीं करता है, होता है ऐसे भी, उसमें सोचते हैं थोड़ा योग कर लेते हैं, योग लगता ही नहीं है और किताब पकड़ते नहीं है, तो ना इधर का हाथ में है ना उधर का हाथ में है। तो जबरदस्ती हमको पढ़ने के संस्कार डालने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारा परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन होगा कैसे। तो पुरुषार्थ के प्रति गंभीरता भी चाहिए, जीवन में अंतर्मुखता भी चाहिए, जीवन में मधुरता भी चाहिए, गुण ग्राहकता भी चाहिए, संयम भी चाहिए, हाँ जी, सरलता भी चाहिए, तो मोल्डिंग नेचर, ताकि हम उस माहौल के अनुसार सब कुछ चाहिए। वो तो बाद में धीरे धीरे फिर अपने आप ही सब कुछ होता जाएगा, धीरे धीरे। दृढ़ता भी चाहिए, अनेक प्रकार के गुण, लेकिन गुण देखा जाए तो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। सहनशीलता भी चाहिए। कल हम मुरली पढ़ रहे थे, जितना सहन करते जाएंगे उतना मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे। तो ये जीवन में गुणों का महत्व है। जो भी बाबा ने हमको ज्ञान भी एक शक्ति है, ज्ञान के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाए तो वास्तव में योग, कई बार जिक्र किया ना, अगर 4 घंटे का ज्ञान पढ़ा गो तो हमारे 40 मिनट योग लगेगा, नहीं तो मुरली से निकले चाय पी और भूल गए। कल की मुरली में था ना, चाय पी और भूल गए। तो जिस समय मुरली सुनते हैं उसी समय कम से कम लास्ट में योग चल रहा है तो 5-7 पॉइंट याद कर लें, चिंतन करें, तो मुरली भूलें, कम से कम 8-10 पॉइंट तो बुद्धि में रहें, ताकि वो हम उसको अमल में ला सके। इसलिए एक दो से हम कभी बीच बीच में कोई हमारे से स्लोगन पूछता है, हम किसी से पूछते रहते हैं, तो दूर से कोई देखता है तो अपना मोबाइल निकाल के याद करना शुरू कर देता है, अभी आएगा तो पूछेगा। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा तो भी लाइफ ही क्या है, तो ज्ञान की लेन देन करना ही तो लाइफ है ना, कि दूसरी बातें थोड़े नहीं सुनेंगे अभी, वो करने के बाद भी दूसरी बातें कर ही लेते हैं फिर भी हम। लेकिन हमारा जीवन में ज्ञान नहीं होगी जीवन है तो ज्ञान की लेन देन करना अनिवार्य है। इसलिए कमलेश भाई हमेशा एक सप्ताह के स्लोगन याद रखता है, अभी भी सुना देगा अगर पूछेंगे आपको, आगे आने वाले पीछे विदो नहीं। तो ज्ञान योग से हमारा लगाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक बल है, ज्ञान एक शक्ति है। जितना ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा तो योग में वो शक्ति रूप में, योग में वो शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, योग की शक्ति जमा होती रहेगी, प्योरिटी स्वतः बढ़ती जाएगी। प्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्योरिटी अपने आप ही बढ़ेगी। अगर हमने ये दवाई खाई है तो काम तो करेगा ना, बीमारी इम्प्योरिटी क्या है, बीमारियां क्या है, इम्प्योरिटी है। तो ये जो ज्ञानियों की गोली अगर खाते रहेंगे तो प्योरिटी तो स्वतः बढ़ती जाएगी, स्वतः कर्मेंद्र पर कंट्रोल होता जाएगा, है ना, स्वतः हमारी दृष्टि वृत्ति कृति जो विश्वास संस्कार है स्वतः परिवर्तन होते जाएंगे। तो अटेंशन और चेकिंग हमको बार बार करते रहना है ना। ज्ञान की शक्ति है, मौन भी एक शक्ति है, समय कौन सा चल रहा है, समय के प्रति हम सजग नहीं है, सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो इस समय निकल जाएगा हाथों से। और हम तो कई बार हमको ये संकल्प था कि सारे कल्प में केवल ये वाला सेकंड ही सबसे मूल्य है, सबसे सुख में ये वाला सेकंड है, ये संकल्प आते ही जैसे एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। सोचते हैं कभी जो ये सवेरे या शाम का टाइम है या कभी हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, सोचते हैं केवल 3 मिनट ही है जो सारे कल्प में अति सुखमय है ये, और संगम में ऊपर ही है ये, जो भी हमको टाइम मिलता तो हम उसी समय होते, ये वाला टाइम ही अति सुख में है, सारे कल्प में सबसे ज्यादा सुख अनुभव करने का या अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का केवल यही टाइम है, इसके आगे पीछे वाला नहीं है। इसलिए समय के प्रति हमको पूरा जागरूक रहना जरूरी, कि समय कौन सा चल रहा है। इस समय का हमने सुख नहीं लिया तो कब लेंगे फिर, ओम शांति। समय कौन सा चल रहा है, इस समय का हमने सुख नहीं लिया तो कब लेंगे फिर, ओम शांति।